रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम प्रस्तुत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के आरंभ में आप सूरह फुसिलत की 30वीं से लेकर 33वीं आयतों तक की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं अब्बास इमाम जुमा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دھرتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکاکل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم مانگ کرو گے۔ یہ اتیانت کشماشیل اور دیاوان ایشور کی اور سے تمہارے آتتھ کا سادھن ہے، اور اس ویکتی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایشور کی اور بلائے، اچھے کرم کرے اور یہ کہے کہ نشچت روپ سے میں اس کے آگیاکاری بندوں میں سے ہوں۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو صدا کی بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ آج شنیوار ہے، आबान माह की 7, रबी उसानी की 3 और अक्टूबर की 29 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। शिराज में हुए आतंकी हमलों की निंदा के लिए पूरा ईरान सड़कों पर। विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान यूक्रेन और यमन जंग का विरोध करता है। भारत का कहना है कि आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है। इमरान खान लॉन्ग मार्च पर निकले, सरकार परेशान। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। शिराज में धार्मिक स्थल के भीतर हुई आतंकी घटना की भर्त्सना के लिए पूरा ईरान की जनता जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर निकली। राजधानी तेहरान सहित सारे शहरों और कस्बों में लोगों ने जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाले और अमरीका व ज़ायनी शासन की साजिश और इस साजिश को अमली जामा पहनाने वाले तकफीरी आतंकियों की निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम दुश्मनों की हर साजिश के जवाब में और ज्यादा मुत्तहिद होंगे। प्रदर्शनकारी अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, ब्रिटेन मुर्दाबाद, उपद्रवी मुर्दाबाद, दाइशियों का सपना पूरा नहीं होगा जैसे नारे लगा रहे थे। ईरान में एक महीने से जारी हंगामों और उपद्रव के बीच शिराज में स्थित पैगम्बर इस्लाम के वंशज अहमद बिन मूसा शाह चिराग के मजार में आतंकी हमला हो गया, जिसमें 15 जायरीन शहीद और दर्जनों घायल हो गए। इस हमले की निंदा में पूरे ईरान और विश्व स्तर पर की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, रूस, ताजिकिस्तान सहित दर्जनों देशों ने आतंकी हमले की निंदा की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने तुर्की के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में इस देश के राष्ट्रपति को बधाई दी और बल दिया कि ईरान और तुर्की बहुपक्षीय संबंधों में विस्तार के लिए अपनी क्षमताएं रखते हैं। 29 अक्टूबर को तुर्की का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1923 को इस देश को तुर्की गणतंत्र घोषित किया गया था। राष्ट्रपति ने अपने तुर्क समकक्ष रजब तैयब अर्दोगान को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि दो स्वतंत्र और एकपक्षीयवाद के विरोधी देशों के रूप में ईरान और तुर्की एक दूसरे के पुराने पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच बहुपक्षीय संबंधों के विस्तार की अपार क्षमताएं पाई जाती हैं। इससे पहले राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने मेडिकल यूनिवर्सिटियों के प्रमुखों से मुलाकात में कहा था कि दुश्मन साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के विकास को रोकने के लिए देश के शैक्षणिक केंद्रों की गतिविधियों में रुकावट डालना और इन केंद्रों का चैन और सुकून छीनना चाहता है। उन्होंने इस अवसर पर कोरोना नियंत्रण पाने और वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटियों की सफलताओं, ईरान के नागरिकों को दिए गए चिकित्सा इंश्योरेंस, मेडिकल उपकरण और दवाओं की गुणवत्तापूर्ण पैदावार और निर्यात को इस क्षेत्र में विशेषज्ञों और कर्मियों के अथक प्रयासों का परिणाम करार दिया। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कोलबा से टेलीफोनी बातचीत में आपसी रिश्तों और सहयोग की समीक्षा की और साथ ही साफ शब्दों में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान 8 साल तक थोपी गई जंग का दंश झेल चुका है, इसीलिए यूक्रेन और यमन में होने वाली जंग का विरोध करता है। विदेश मंत्री हुसैन मीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि रूस से हमारे अच्छे संबंध हैं और पहले से ही रक्षा सहयोग चला आ रहा है, लेकिन यूक्रेन जंग के मामले में हमारी रणनीति देशों की अखंडता का सम्मान करने, संघर्षरत पक्षों में से किसी एक को भी हथियार न देने, जंग तत्काल रुकवाने, बेगुनाह जनता के विस्थापन को रोकने पर आधारित है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस्लामिक गणतंत्र ईरान की विदेश नीति बिल्कुल साफ है और जंग विरोधी उसूल पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमें दोनों देशों के सामरिक विशेषज्ञों की प्रत्यक्ष बैठक की जरूरत है जिसमें इस मुद्दे को हल किया जाए। इस बातचीत में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक विशेषज्ञों की बैठक होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी दूसरे की राय से प्रभावित होकर अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करते। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि तेहरान शीघ्र ही अमरीका और कनाडा की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के जवाब में इन देशों के लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा ने बुधवार को ईरान के 6 लोगों और 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे और उन पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया था, जबकि अमेरिका ने भी ईरान की इंटेलिजेंस और आईआरजीसी के कमांडरों, जेल वार्डन्स और दूसरे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की सूचना दी थी। अमरीका और कनाडा की इन कार्रवाइयों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि वो अमरीका और कनाडा की इन कार्रवाइयों का जवाब उचित देंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि तेहरान शीघ्र ही अमरीका और कनाडा के लोगों और संस्थाओं पर आतंकवाद, आतंकवादियों की जानबूझकर समर्थन, हिंसा और घृणा को हवा देने, दंगों और हिंसक कार्रवाइयों और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का हनन करने के आरोप में प्रतिबंध लगाएगा। ईरान के सेना प्रमुख जनरल मूसवी ने शिराज में हुए आतंकी हमले में अपने माँ बाप और भाई को गंवाने वाले मासूम बच्चे आरतीन सरीदरान के नाम जज्बात में डूबा संदेश भेजा है। जनरल मूसवी ने अपने संदेश में लिखा है, काश आपके माता पिता और भाई की जगह मैं खून में नहाता और तुम्हें यह गम न उठाना पड़ता। जनरल मूसवी ने आगे लिखा कि मेरे बेटे आरतीन, मेरा दिल तुम्हारे दुख के बारे में सोचकर डूब जाता है। काश तुम्हारे दिल के जख्म मेरे सीने में भर जाते और मैं तुम्हें माँ बाप और भाई के गम में तड़पते न देखता। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक के इलाके में से फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध की आंधी उठने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हालात को बिगाड़ने में गैर कानूनी ज़ायोनी बस्तियों की भूमिका है। मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति दूत टोड विंसलैंड ने कहा कि फिलिस्तीन में हालात बहुत खराब हैं और वेस्ट बैंक में सुरक्षा हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए विंसलैंड ने कहा कि गैर कानूनी बस्तियों में बसने वाले ज़ायोनियों की हिंसा के चलते वेस्ट बैंक के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि निराशा और आक्रोश के चलते सुरक्षा हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब उन्हें काबू में कर पाना कठिन हो गया है। उनका कहना था कि लंबे समय से बातचीत की प्रक्रिया बंद है जिसकी वजह से हिंसा और बढ़ी। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीनी प्रशासन में प्रतिनिधि रियाज मंसूर ने कहा कि इसराइल फिलिस्तीनी प्रशासन को ध्वस्त कर देने की कोशिश कर रहा है, सुरक्षा परिषद को चाहिए कि उसकी मदद करे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकरोधी प्रतिबंध व्यवस्था उन देशों को आगाह करने के लिए प्रभावी है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य द्वारा वित्त पोषित उद्यम बना लिया है। भारतीय विदेश मंत्री ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के बावजूद आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है, खास तौर पर एशिया और अफ्रीका में। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने पिछले 2 दशकों में आतंकवाद से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद रोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास निर्मित महत्वपूर्ण संरचना विकसित की है। ये उन देशों को आगाह करने के लिए बहुत प्रभावी रही है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य द्वारा वित्त पोषित उद्यम बना लिया है। भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वो आतंकवाद को मंसूबे के तहत बढ़ावा दे रहा है, वहीं पाकिस्तान भी भारत पर यही आरोप लगाता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के निकट आते ही हर पार्टी अलग अलग तरीके से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। गुजरात में नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरों का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि प्रदेश सरकार ने तुरप का पत्ता फेंक दिया। गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल दी। गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात मंत्रिमंडल के ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के उद्देश्य से समिति गठित करने को अनुमति प्रदान की है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। रिक्त सरकारी पदों को भरने की मांग को लेकर मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित एक रैली में उस वक्त हिंसा शुरू हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने राहगीरों पर लाठियों से हमला करते हुए वाहनों को नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मारपीट के दौरान घायल हुए लोगों में एक स्थानीय समाचार पत्र के वीडियो पत्रकार भी शामिल हैं। रैली का आयोजन करने वाले फेडरेशन ऑफ खासी जयंता एंड गारो पीपल के अध्यक्ष डंडी होगसिट ने कहा कि मैं दुखी हूं और एक मीडियाकर्मी पर हुए हिंसक हमले के लिए मैं माफी मांगता हूं। आज हमारी ताकत और शक्ति दिखाने का समय नहीं है, लेकिन अगर सरकार युवाओं के मुद्दों का समाधान नहीं करती तो इसे शुरुआत समझा जा सकता है। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई। ये पूछे जाने पर क्या आजम खान को अयोग्य घोषित किया गया है, दुबे ने कहा कि हम एक वर्तमान सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल संबंधित सीट की रिक्ति की घोषणा करते हैं। अयोग्यता तो अदालत के आदेश के बाद पहले ही हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों की भारी संख्या के साथ शुक्रवार को लॉन्ग मार्च पर निकल पड़े। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। इस मार्च का मकसद सरकार पर तत्काल चुनाव करवाने के लिए दबाव डालना है। लाहौर में इमरान खान के समर्थक दसियों हजार की संख्या में एकत्रित हो गए और अपेक्षा की जा रही है कि इतनी ही संख्या और भी इस लॉन्ग मार्च में जुड़ जाएगी। 380 किलोमीटर का ये लॉन्ग मार्च एक सप्ताह तक चलेगा और इस बीच इमरान खान रुक रुक कर जनसभाएं करेंगे। इमरान खान ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो एक कंटेनर के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने भारी जनसमूह है जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे राजनीतिक हिंसा का सख्ती से मुकाबला करेंगे। उन्होंने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शौहर पर होने वाले हमले की निंदा की और सुरक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि राजनीतिक हिंसा संसदीय चुनाव से पहले तेजी से बढ़ रही है। जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि पेलोसी के पति पर हमला निंदनीय है, राजनीति में हिंसा के खिलाफ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो चुका, जिसके पास भी जमीर है वो राजनीति में हिंसा के खिलाफ खुलकर खड़ा हो। यूक्रेन में युद्ध में शामिल होने के लिए 30 लाख रिजर्व सैनिकों के लक्ष्य को पूरा करने के बाद रूस ने और अधिक लोगों की भर्ती को रोक दिया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय मंत्री सर्गेई शोइगो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऑनलाइन बैठक में ये खबर दी है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान में हालिया दिनों में होने वाले दंगों की वास्तविकता से तेहरान के इमाम जुमा द्वारा उठाए गए पर्दे के बारे में,
मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने कहा है,
और फिर बात करेंगे फिलिस्तीन में आतंकी इसराइली सैनिकों द्वारा लगातार किए जा रहे अत्याचारों के बारे में,
फिलिस्तीनी इलाकों में बढ़ती हिंसा,
और अंत में चलेंगे भारत जहां कश्मीर में वोटर लिस्ट में होने वाली गड़बड़ियों के आरोपों के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस।
तो सबसे पहले बात करते हैं तेहरान के इमाम जुमा के उस बयान के बारे में कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व में वर्चस्ववाद की योजना ईरान की पहचान को मिटाना और निराशा पैदा करना है। इस संबंध में विस्तार से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने कहा है कि वर्चस्ववादी ईरान में पहचान को मिटाना चाहते हैं और निराशा का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं। तेहरान के इमाम जुमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी कहते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में वर्चस्ववाद की योजना यह है कि यहां पर पहचान को मिटाया जाए और देश में निराशा का वातावरण उत्पन्न कर दिया जाए। उन्होंने अपने जुमे के खुतबे में कहा है कि अमेरिका का मूल उद्देश्य ईरान की इस्लामी शासन व्यवस्था को गिराना है। ईरान में हालिया उपद्रव के दौरान अमरीकी नेतृत्व में जो कुछ किया जा रहा है उससे तो यही पता चलता है कि वे इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पहले चरण में वे पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक युद्ध छेड़ा जा चुका है जो कि बहुत ही जटिल है। इस युद्ध में सोशल मीडिया सहित हर प्रकार के संपर्क के साधनों को हथकंडे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ईरान के विरुद्ध छेड़े गए सांस्कृतिक युद्ध में अब तक अरबों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। हाज अली अकबरी ने कहा है कि इस समय देश के युवाओं को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इस बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि वे लोग ऐसी नई पीढ़ी के इच्छुक हैं जो अदूरदर्शी, सती सोच वाली, उत्साहीन, निराशावादी और अविश्वसनीय हो। ईरान के संदर्भ में विश्व वर्चस्ववाद की दूसरी कार्रवाई अशांति उत्पन्न करना है। इसको उन्होंने अपनी कार्यसूची में शामिल कर रखा है। हालांकि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ये काम विभिन्न शैलियों में पिछले 4 दशकों से अधिक समय से किया जाता रहा है। हालिया अशांति में पश्चिम ने खुलकर उपद्रवियों का समर्थन किया और अब भी कर रहे हैं। इस काम से उनका लक्ष्य ईरान को अशांत बनाना है। इसी के साथ विश्व वर्चस्ववाद ईरान को अशांत बनाए रखने के लिए आतंकी गुटों, विशेषकर तकफीरी आतंकी गुटों से सहायता ले रहा है। इसका ताजा उदाहरण शिराज नगर में स्थित शाह चिराग के मजार पर नमाज के दौरान लोगों पर हमला करना था जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शहीद हो गए। इस हमले के बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह रुज़्मा सैयद अली खामेनेई ये कहते हैं कि आग भड़काने वाले दुश्मन के संबंध में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश की सुरक्षा प्रणाली और न्यायपालिका का समर्थन करें और हम सब एकजुट रहें।
और अब चर्चा करते हैं फिलिस्तीनी जनता पर अवैध ज़ायोनी शासन के बढ़ते जुल्मों के बारे में। फिलिस्तीन के हालात पर सुरक्षा परिषद में हुई बैठक में बुरी तरह घिरा इसराइल, अपराधों की हुई निंदा, मगर अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं न्यूयॉर्क से IRIB के संवाददाता अली रजबी, हमारे साथी अहमद अब्बास की आवाज़ में।
فلسطینی علاقوں میں بڑھتی ہنسا اور اسرائیلی سینکوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی ہتیا میں لگاتار ہو رہی وردھی کے درشٹیگت سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کی بیٹھک ہوئی۔ دو سطروں میں چھ گھنٹے کی بیٹھک میں بحث تو بہت ہوئی، لیکن غیر قانونی شاسن کے سمرتھکوں نے بیٹھک کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیا۔ ٹور وینسلینڈ، جو مدھیہ پور میں سنیکت راشٹر سنگھ کے شانتی دوت ہیں، زیونی شاسن سے مانگ کی کہ فلسطینیوں کو ان کے گھر بار سے نکالنے اور انہیں وستھاپت کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دشکوں سے جاری زیونی شاسن کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی نراشا اور آکروش بالکل صاف نظر آتا ہے۔ البتہ وینسلینڈ نے اسرائیل کے اپرادھوں کی نندا نہیں کی، مگر اتنا کہا کہ زیونی فلسطینیوں کے گھر دھوست کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے نرمان کا لائسنس نہیں لیا گیا، جبکہ کسی بھی فلسطینی کے لیے اسرائیل سے اس طرح کا پرمیشن لینا اسمبھو ہے۔ اس بیٹھک میں ایران کے راجدوت نے کہا کہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2022 میں بڑی سنکھیا میں فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اس پہلو سے 2006 کے بعد یہ سب سے برا سال ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اپرادھ گنوائے۔
74 years
فلسطینیوں کی ہتیا، انہیں ان کے گھروں سے نکالنا اور فلسطینیوں کے خلاف انیک طرح کی اپرادھک کاروائیاں کرنا، یہ اسرائیل کی کرتوتیں ہیں جو پچھلے 74 سال سے جاری ہیں۔ یہ حرکتیں سارے انتراشٹریہ قانونوں کا الگھن ہے۔ فلسطینیوں کو سرکشا پریشد کے سمرتھن کی ضرورت ہے۔ ایران کے راجدوت نے کہا کہ فلسطینیوں کو پورا ادھیکار ہے کہ اسرائیلیوں کے حملوں کے جواب میں آتم رکشا کی کارواہی کریں۔ آئرلینڈ کی راجدوت نے بھی قبضے والے فلسطینی علاقوں کے حالات کو بے حد چنتا جنک بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس بات کی گہری چنتا ہے کہ اسرائیل بہت زیادہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پترکار شیرین ابو عاقلا کے قتل کی، ان کا کہنا تھا کہ شیرین ابو عاقلا کی ہتیا کا معاملہ ایک گمبھیر وشے ہے جس کی سوتنتر اور نشپکش جانچ بہت ضروری ہے، اور ہم اس پر زور دیتے ہیں۔
The killing of journalist Shireen Abu Akela.
سنیکت راشٹر سنگھ کے مانوادھیکار ہائی کمیشن کی رپورٹ کے انوسار اس سال اسرائیل نے ویسٹ بینک میں ہی 118 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں 26 بچے اور 5 مہیلائیں شامل ہیں۔ نیویارک سے آئی آر آئی بی کے لیے علی رجبی کی رپورٹ۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت پرشاست کشمیر میں ووٹر لسٹ میں ہو رہی دھاندلی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ وہیں کشمیر کے سب سے بڑے دھارمک نیتا مولانا عباس انصاری کے ندھن پر ہونے والی شوک سبھاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سمباددتا سپت محمد حسن۔
جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے نئی دہلی کی ادھیکشتا حاصل ہے، نے آج ایک سمباددتا سمیلن میں کہا ہے کہ سری نگر کے کئی کانسٹیچوئنسیز میں غیر راجی کے ناگرکوں کو متدان لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت گمبھیر ایشو ہے۔ سری نگر میں پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے پیپلز کانفرنس کے مہا سچیو بشارت بخاری نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لسٹ ہمارے سامنے آیا ہے اور جس طرح سے اس میں غیر ریاستی لوگوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، وہ جموں کشمیر کے ناگرکوں کو سویکار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار نئی دہلی کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا کہ وہ ایسی ایکسرسائز نہ کریں، پرنتو انہوں نے یہ سویکار کیا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ اس اوسر پر بشارت بخاری نے کہا،
چیف لائے آج ہم نے سوچا آپ سے چند باتیں کریں۔ معاملہ ایک حساب سے بڑا گمبھیر ہے، کیونکہ اگر واقعی میں یہ صحیح ہے جو ہم کہنے جا رہے ہیں تو انتہائی گمبھیر بن سکتا ہے یہ معاملہ۔ وہ ایسا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، ایک کاغذ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی کل ملا کر 1381 نمبر ہے، اس پہ سیریل نمبر ہے۔ یہ ہمارے خورشید عالم صاحب ہیں، انہوں نے 2014 کا الیکشن لڑا خانیار سے، اور اس وقت کی الیکشن کے بعد شاید انہوں نے ایک ایکسرسائز کی اپنے طور پہ، اور یہ دیکھا کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو خانیار حلقہ انتخاب میں، تب کے شاید آج بھی اسی میں آئیں گے، تب کے حلقہ انتخاب میں 1381 ایسے افراد ہیں جن کا ووٹ درج تھا لیکن ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ، جو انہوں نے اس وقت ایکسرسائز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاید کیس بھی کر لیے، ریپرزنٹیشن بھی دی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اگر واقعی میں ایسا صحیح ہے اور آج کل ایک پروسیس چل رہا ہے، تو اس پروسیس کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار سے ہم نے یہ ہم ڈی سی سری نگر اعجاز اسد صاحب سے بھی ملے, اکٹھے ہم نے ان کو ایک کاغذ دے دیا, اور بھی ہم جو الیکشن اتھارٹیز ہیں ان کو بھیج رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک یہ جو نان ایگزسٹنگ ٹب تھے, کیا یہ آج بھی آج کے ووٹر فہرست میں شامل ہیں؟ اگر شامل ہیں تو اس وقت جب یہ شامل کیے گئے یا رکھے گئے کس نے رکھے, کس نے رکھوائے, اور اگر ان میں سے کسی نے اس نام پر کسی نے تب ووٹ ڈالا ہے تو اس ووٹ کا امپیکٹ اس وقت کے الیکشن پہ کیا پڑا ہوگا, وہ بھی عیاں ہو جائے گا اس چیز سے. ہمیں اعتبار اس پہ اس لیے ہے کیونکہ جو دوسرا ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 514, آپ کیوں بھی یہ کاپی دیں گے, ہم 514 ایسے افراد شامل ہیں ووٹر فہرست میں خانیار کے جو دو جگہوں پہ ووٹ ڈالتے ہیں خانیار میں. جیسے ایک شخص کا نام نہیں لوں گا میں, وہ رشی مالا 44 ہے, اس کے بعد وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1019, اور پھر لون مالا میں بھی درج ہے وہاں پہ نمبر ہے 691. تو یہ 514 جو ہیں, یعنی 514 کا ڈبل ہے.
ادھر کشمیر کے ایک دگج دھارمک نیتا مولانا محمد عباس انصاری کے دیہانت کے بعد سوگ سباہوں کا جو آیوجن ہے وہ اب بھی جاری ہے, اور ایک بہت بڑی سوگ سبھا آیوجت ہوئی جس کے ادھیکشتا اسلامی جمہوریہ ایران سے آئے ہوئے ایک گیسٹ اوغیس سید مہدی زادہ علی موسوی نے کی. انہوں نے اپنے بھاشن میں لوگوں پر بل دیا کہ وہ ایکتا کے ساتھ آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مولانا محمد عباس انصاری نے اپنے دیہانت سے پہلے جو کاریہ کیا ہے اس کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا عباس انصاری نے اپنی پوری زندگی مسلم ایکتا کے لیے صرف کی ہے. میں ان کے پتروں سے بھی یہی بنتی کرتا ہوں کہ وہ اس مشن کو جاری و ساری رکھیں. سبت محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
دوستوں, راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے. उज्ज्वल भविष्य.
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी को लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हैं स्वाति और सैयद मेसाम का सलाम स्वीकार कीजिए. आज भी हम इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान में शांति और सुरक्षा की स्थिति की चर्चा करेंगे.
پچھلے کارکرم میں ہم نے اسلامی کرانتی کے بعد ایران میں کرانتی ورودھی اور آتنکوادی گٹوں کی گتیویدھیوں اور دیش کو اشانت کرنے کے پریاسوں پر ایک نظر ڈالی تھی. اسلامی کرانتی کی سفلتا کے ترنت بعد ایران کو جہاں ودیشی طاقتوں سے گمبھیر چنوتی مل رہی تھی, وہیں دیش کے بھیتر کچھ ایسے گٹ سکریہ ہو گئے تھے جو کرانتی کو اسفل بنانے کے ساتھ ہی دیش کو توڑنے کی سازش رچ رہے تھے. لیکن اسلامی گڑتنتر ایران نے امام خمینی کے نیتتو میں ان سمست سازشوں پر پانی پھیر دیا اور اسلامی ویوستا کی نیو کو مضبوط کیا. اسلامی کرانتی کی مہتوپورن اپلبدھیوں میں سے ایک ایرانی راشٹر کے ہیتوں کی رکشا اور ناگرکوں کے لیے شانتی اور سرکشا کی استھاپنا ہے.
جیسا کہ ہم نے الیکھ کیا تھا کہ سرکشا کے وبھن آیاموں میں سے ایک مہتوپورن آیام راجنیتک سرکشا ہے. راجنیتک سرکشا کا سمبندھ دیشوں کی سنگھٹناتمک استھرتا, سرکاری پرنالیوں اور ان وچارداراؤں سے ہے جو سرکاروں اور راجیوں کو وید بناتی ہے. اسلامی کرانتی کی سب سے مہتوپورن اپلبدھی اس کی راجنیتک لوکپریتا ہے. اسلامی ویوستھا پرنالی کی استھرتا کا کارن یہ ہے کہ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے مکھیہ کارنوں میں سے ایک کرانتی سے پہلے راجشاہی شاسن کا کمزور ہونا اور ودیشی سرکاروں پر نربھر ہونا تھا. لیکن اس کے وپریت اسلامی گنتنتر ویوستھا نے سوتنتر اور سوادھین نیتی اپنائی اور عام لوگوں کو اپنی طاقت بنایا.
ایران میں اسلامی کرانتی کی سفلتا واستو میں راجشاہی ویوستھا کی سماپتی اور لوک تانترک ویوستھا کی استھاپنا تھی. سمست سازشوں کے باوجود ایرانی جنتا نے ہر کھیتر میں بڑھ چڑھ کر اسلامی کرانتی کا سمرتھن کیا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا. اسلامی کرانتی کی سفلتا کے پہلے 3 وشوں کے دوران ویرودھیوں نے ہر استر پر ہر وہ قدم اٹھایا جس سے کسی بھی شاسن کا پتن کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دیش میں الگاؤوادی گٹوں کو وشو کی 2 مہاشکتیوں دوارا سمرتھن دیا گیا، پرتیبندھ لگائے گئے اور ورشٹھ نیتاؤں اور ادھیکاریوں کی ہتیائیں کر کے تختہ پلٹ کرنے کے پریاس کیے گئے۔
समस्त घटनाक्रमों और परिवर्तनों के बावजूद पिछले 4 दशकों के दौरान ईरानी जनता ने जिस शांति और सुरक्षा का स्वाद चखा है, क्रांति से पहले उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। क्रांति से पहले शाही हुकूमत के दौरान लोगों की जान और उनके माल को हमेशा खतरा रहता था, लेकिन क्रांति के बाद देश में ऐसा वातावरण बना कि लोग एक दूसरे की जान और माल का सम्मान करने लगे। पहली बार लोगों ने सही माने में शांति के सुख का आनंद लिया और यह जाना कि इंसान के जीवन में शांति और सुरक्षा का वही महत्व है जो भोजन और जल का है। अगर इंसान की जान और इज्जत ही खतरे में रहे तो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं और जीवन नरक बन जाता है।
हालांकि इस्लामी क्रांति से पहले शाही शासनकाल में खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ शाही परिवार और उसके दरबारियों की सुरक्षा के बारे में सोचती थी और योजना तैयार करती थी। यही वजह है कि क्रांति से पहले लगभग 200 वर्षों के दौरान देश में कोई राष्ट्रीय और लोकप्रिय सरकार के न होने से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कई हिस्से देश से अलग हो गए। शाही शासन का मानना था कि विश्व की महाशक्तियों पर निर्भर रहकर और उनका समर्थन हासिल करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खरीदा जा सकता है। दरअसल इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले सरकारों ने यह मान लिया था कि वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकती हैं। शाही शासन को सिर्फ इस बात पर गर्व था कि उसे एक क्षेत्र में अमरीका का थानेदार होने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन इन 200 साल के अनुभव ने हर बार ये साबित किया कि महाशक्तियां सिर्फ उस वक्त तक मौजूदा सिस्टम का समर्थन करती हैं जब तक वो उनके हित में होता है, और इस समर्थन के बदले वो उनसे अत्यधिक विशेषताएं प्राप्त करती हैं। लेकिन जब उनके हित खतरे में बढ़ते हैं या उन्हें लगता है कि वो मौजूदा सिस्टम को बचाने में असमर्थ हैं तो तुरंत चोला बदल लेती हैं।
ईरान की इस्लामी क्रांति ने इमाम खुमैनी के नेतृत्व में जनता के समर्थन से पिछले 4 दशकों के दौरान न केवल देश में शांति और सुरक्षा की स्थापना की, बल्कि 8 वर्षीय युद्ध समेत विभिन्न संकटों के दौरान देश की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखा। पर पहली बार युद्ध में देश की एक बलिष्ठ जमीन पर भी दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। ईरानी युवाओं ने रक्षा समेत समस्त क्षेत्रों में इस विश्वास को जिंदा रखा कि हम कर सकते हैं। यही विश्वास ईरानी राष्ट्र के विकास की बुनियाद बन गया और आज देश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। आज ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति है जिसके खिलाफ दुश्मन चाहे जितनी साजिशें रच लें, लेकिन उसकी तरफ मैली आंखों से नहीं देख सकता।
क्षेत्रीय स्तर पर आज ईरान इतना शक्तिशाली बन गया है कि सीरिया और इराक में सीधे उपस्थित होकर दाइश जैसे आतंकवादी गुटों का न सिर्फ मुकाबला करता है बल्कि उन्हें नष्ट कर देता है। कई लोगों का मानना है कि अगर ईरान सीरिया और इराक के संकटों में भूमिका अदा नहीं करता तो ये संकट विकराल रूप धारण कर लेते। ईरान ने ये सभी उपलब्धियां ऐसी हालत में हासिल की हैं कि जब उसे पिछले 4 दशकों से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना रहा है। इसके अलावा इस्लामी क्रांति के प्रभाव में सीरिया, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन और यमन में प्रतिरोधी गुटों का गठन हुआ और खतरा ईरान की सीमाओं से हटकर दुश्मन की सीमाओं तक चला गया। दुश्मन जानता है कि अगर वो कोई गलती करेगा तो प्रतिरोधी शक्तियां उसे मुंह तोड़ जवाब देंगी। इस प्रकार ईरान की रक्षात्मक शक्ति अद्वितीय बन गई है, जिसके कारण इसराइल के उकसाने के बावजूद ट्रंप जैसा ईरान का दुश्मन उस पर हमले का साहस नहीं कर सका।
ईरान में आज लगभग सभी क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम है। देश के सबसे दूर दराज वाले इलाकों में भी सभी वर्गों, विशेष रूप से महिलाएं और लड़कियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और वे अकेले जहां चाहें यात्रा कर सकती हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक ईरान पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हालांकि कभी कभी आतंकवादी और असामाजिक तत्व समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ त्वरित गंभीर कार्रवाई होती है। ईरान में सुरक्षा व्यवस्था को दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में स्थित फ्रांस जैसे देश की सुरक्षा व्यवस्था से अगर तुलना करें तो देखेंगे कि इस देश में 1/4 से ज्यादा महिलाएं अकेले घर से निकलने में डरती हैं, क्योंकि उन्हें अपमानित होने, छेड़छाड़ और हमले का डर रहता है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई की दृष्टि में सुरक्षा का महत्व बहुत अधिक है और धार्मिक दृष्टि से ये वाजिब है। वे कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे वाजिब चीज है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होगी तो सरकार काम ही नहीं कर सकेगी। निर्माण के लिए एक ईंट दूसरी ईंट पर नहीं रखी जा सकेगी। अगर देश में उथल पुथल होगी तो देश की किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकेगा। उनके दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्था में सुरक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है। इस हद तक कि समाज के उत्थान के लिए ये पहली शर्त है। वे कहते हैं, सुरक्षा एक बड़ी नेमत है। कुरान में भी शांति और सुरक्षा का जिक्र है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना जरूरी है।
वरिष्ठ नेता का मानना है कि ईरान की प्रगति का राज भी सुरक्षा में है। सुरक्षा के बिना कोई भी देश अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता। शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, निर्माण और बाकी समस्त क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा की भूमिका अद्वितीय है। शांति और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक राष्ट्रीय एकता है। इसीलिए इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी और उनके उत्तराधिकारी और इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता हमेशा राष्ट्रीय एकता और एकजुटता पर जोर देते रहे हैं। वरिष्ठ नेता का मानना है कि इस्लामी क्रांति के बरकत से देश में एकता उत्पन्न हुई है। एकता समाज में स्थिरता और प्रगति का कारण है। एकता के नारे के साथ ईरान ने बड़ी बड़ी रुकावटों को रास्ते से हटा दिया है। भविष्य में ईरानी जनता एकजुट रहकर अपने सामने आने वाली रुकावटों को दूर करती रहेगी।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओ, आज हम
लवासानात नगर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने आपको तेहरान प्रांत के शेमिरानात नगर और तजरीश क्षेत्र के बारे में बताया था। हमने आपको तजरीश में मौजूद इमामजादे सालेह के मकबरे के बारे में भी विस्तार से बताया था। आज हम तेहरान प्रांत के एक अन्य नगर लवासानात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।
ईरान ऐसा देश है जो अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण पहाड़ों, जंगलों, चरागाहों, नदियों, झरनों, राष्ट्रीय उद्यानों और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न है। दूसरी ओर संस्कृति, सभ्यता और वास्तुकला की दृष्टि से इस भूमि की प्राचीनता ने इसे विशेष समृद्धि प्रदान कर दी है। इस समय तेहरान की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी आबादी की आवाजाही के कारण ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। इस परेशानी के बावजूद अलबोर्स पहाड़ के दामन में स्थित होने और शहर के आसपास हरे भरे मैदानों के कारण तेहरान महानगर दुनिया के कई बड़े शहरों से अधिक महत्व का स्वामी है।
सुंदर मैदानी इलाके, अधिक आबादी और शोर शराबे वाले इस शहर का एक आकर्षण भी इन्हीं चीजों में निहित है। यही कारण है कि जब भी कोई पर्यटक तेहरान की यात्रा करता है तो वो यादगार के रूप में तेहरान के निकटवर्ती इलाकों का उल्लेख जरूर करता है। तेहरान के लोगों के बीच काफी पुराने समय से ये प्रचलन रहा है कि वे सप्ताहांत की छुट्टियां इन्हीं सुंदर निकटवर्ती इलाकों में गुजारते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मात्र थोड़ी सी दूरी तय करके शहर के आसपास ऊंचे इलाकों तक सरलता से पहुंचा जा सकता है। ऐसे आकर्षक क्षेत्रों की यात्रा करके तरोताजा माहौल में शहर की थकान उतारी जा सकती है। तेहरान प्रांत की उत्तरी सीमा पर अलबुर्ज के पहाड़ी आंचल की ऊंचाई 1500 मीटर है, जो इस प्रांत के पश्चिमोत्तर तक फैला हुआ है। जैसे जैसे तेहरान प्रांत के पूर्वी भाग की ओर हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि हम इसके सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंच जाते हैं।
दोस्तों, अब हम ईरान के विभिन्न क्षेत्रों की सैर के अंतर्गत लवासाना चल रहे हैं, जिसको आम बोलचाल में लवासान कहा जाता है। इस क्षेत्र की गणना तेहरान के महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न क्षेत्र के रूप में होती है। यहाँ की जलवायु बहुत सुहानी है। यहाँ पर बहुत से प्राकृतिक आकर्षण पाए जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र हरा भरा है। यही कारण है कि ईरान के विभिन्न क्षेत्रों से लोग लवासान में प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। लवासान राजधानी तेहरान के निकट स्थित है। तेहरान से मात्र 20 मिनट में यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तेहरान के बहुत से लोगों ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए गर्मियाँ बिताने के लिए अपने विला बनवाए हैं। लवासान की सुंदरता इसके उत्तरी क्षेत्र से आरंभ होती है, जो लतियान डैम पर जाकर समाप्त होती है। लतियान डैम को जाजरुद नामक नदी के रूप पर बनाया गया है। ये बांध लवासान के दक्षिण में स्थित है। दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए लवासान आते हैं।
लवासान में रहने वाले लवासानी लहजे में फारसी बोलते हैं। उनका ये लहजा पुराने तेहरानी लहजे जैसा है। लवासान के कुछ क्षेत्रों में ताती भाषा में भी बात की जाती है, जो प्राचीन ईरानी भाषा है। विशेष बात यह है कि ये भाषा ईरान के अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के आंचल वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि लवासान में विभिन्न जातियों के आगमन और वहां पर उनके बस जाने के कारण अब लोग प्राचीन लहजे में बात नहीं करते, बल्कि वे आधुनिक फारसी में वार्ता करते हैं। हालांकि लवासान में विला स्टाइल में बहुत से बंगले और घर बने हुए हैं, किंतु यहाँ पर अब भी बहुत से स्थानों पर पतली पतली गलियां हैं जिनमें पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर अधिकतर अखरोट और सेब के पेड़ पाए जाते हैं। लवासान के स्थानीय लोगों का पेशा आरंभ से ही बागवानी और कृषि रहा है। यहाँ पर अखरोट, सेब और चेरी अधिक मात्रा में पैदा होते हैं।
दोस्तों, अब हम आपको लवासान के इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप में बताने जा रहे हैं। लवासान नगर को लगभग 5000 वर्ष पुराना नगर बताया जाता है। ان نگر کے ارد گرد موجود ٹیلوں پر کی جانے والی کھدائی میں ایسے بہت سے چن ملتے ہیں جو لواسان کے اتی پراچین ہونے کی پشٹی کرتا ہے۔ یہاں پر موجود پراچین ٹیلوں میں شورکاب، نازم آباد، خرسنگ، حسارک اور اسی پرکار کے کئی انیہ ٹیلوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان پراچین ٹیلوں میں حسارک ٹیلا ادھک مشہور ہے۔ یہ ٹیلا پرائدویپ کی بھاتی ہے۔ حسارک ٹیلا پورب، پشچم اور دکشن تین دشاؤں میں پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کیول اتری دشا سے اس پر جایا جا سکتا ہے کیونکہ وہیں پر سوکھا راستہ پایا جاتا ہے۔ حسارک ٹیلا 230 میٹر لمبا، 50 میٹر چوڑا ہے۔ اس کی اونچائی 30 میٹر کی ہے۔
पुरातन विभाग की टीमों द्वारा की गई खुदाई से यहाँ पर हाथों के बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो मटमैले काले और भूरे रंग के हैं। ये हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन इस क्षेत्र की प्राचीनता की गाथा सुनाते हैं। पुरातन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा वलीपुर बताते हैं कि हिसारक टीले का संबंध चालकोलिथिक अर्थात ताम्रपाषाण काल से है। ये वो काल था जब प्राचीन काल में हथियार और औजारों के निर्माण में तांबे का भी प्रयोग होने लगा था। इस काल में लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी और लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जानवरों का प्रयोग करने लगे थे। ये काल ईसा पूर्व लगभग 4 से 5 शताब्दियों पुराना है। ईरान की राजधानी तेहरान तथा कज़्मीन नगरों के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक काल से संबंधित 28 क्षेत्रों का पता चला है।
اب جبکہ آپ لواسان کے پراچین اتہاس سے کسی سیما تک اوگت ہو گئے ہیں تو اب اچت ہے کہ ہم یہاں کے پراکرتک سوندر پر ایک درشٹی ڈالتے ہیں۔ یہاں کے پراکرتک اور آکرشک کھیتروں میں سے ایک دشت ہویج ہے جس کو انگریزی میں کیرٹ پلین کہا جاتا ہے۔ دشت ہویج لواسان کے افزے نامک گاؤں کے پاس استھت ہے۔ اگر ہم تہران سے سندر کھیتر تک جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں سے پوروتر میں 46 کلومیٹر کی دوری طے کرنی پڑتی ہے۔ یہ خوبصورت میدان سمندر تل سے 2400 میٹر کی اونچائی پر استھت ہے۔ اس جگہ کی جلوایو بہت ہی اچھی اور سکھد ہے۔ اس کھیتر کو ایتہاسک درشٹی سے بھی وشیش مہتو حاصل ہے۔ ایتہاسک کتابوں میں ملتا ہے کہ صفوی شاسن کال میں دشت ہویج اس دور کے راجکماروں کے شکار کا استھل ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیرٹ پلین اس لیے پڑا کیونکہ یہاں پر ادھکانش لوگ گاجر کی کھیتی کیا کرتے تھے۔
دشت ہویج یا کیرٹ پلین کو تلناتمک روپ میں گرم جلوایو والا کھیتر کہا جاتا ہے، اسی لیے گرمیوں میں یہاں پر آنے کا سجھاؤ نہیں دیا جاتا۔ پتجھڑ اور سردی کے موسم میں ٹھنڈ ہونے کے باوجود یہاں کی جلوایو بہت اچھی ہوتی ہے۔ جاڑے کے موسم میں یہاں پر ونٹر گیم کھیلنے کا بھی چلن ہے۔ اپنی تمام وشیشتاؤں کے باوجود دشت ہویج جانے کا سب سے اچت سمے بہار یا بسنت کا موسم ہے۔ اس سمے یہاں پر چاروں اور ہریالی دکھائی دیتی ہے جو منشی کو منتر مگدھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ سمے ہوتا ہے جب پرکرتی نیا پریدھان پہنتی ہے۔
دوستو، لواسان میں ایک مشہور گار یا گفا بھی ہے۔ یہ گفا اب ایک میوزیم کے روپ میں موجود ہے۔ اس کا نام ہے وزیری کیو میوزیم۔ یہ گفا لواسان نگر کے بعد کوندے اولیا نامک گاؤں کے پاس موجود ہے۔ گفا روپی اس میوزیم کو ایران کے مشہور شلپکار ناصر ہوشمندی وزیری نے اپنے خرچے سے بنایا ہے۔ اس میوزیم کو سن 2005 میں بنایا گیا تھا۔ 1000 وگ میٹر کے شیترفل میں پہلے اس میوزیم کو تیار کرنے میں 6 ورشوں کا سمے لگا تھا۔ یہ بات پورے وشواس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وزیری کے میوزیم ایران میں پائے جانے والے میوزیم سے بہت بھن ہے۔ اس کو نکٹ سے دیکھنے سے منشی کو ایک وشیش انوبھو حاصل ہوتا ہے۔
اس کے پرویش کا دوار منشی کو بہت آشچرچکت کرنے والا ہے۔ آپ کو یہاں ہر اور سے گفا تو دکھائی دے گی کنتو بیچ میں وہاں پر ہاتھوں کے بنے ہوئے اسٹرکچر بھی دکھائی دیں گے۔ گفا میں دیواریں بنا کر 8 دالان بنائے گئے ہیں۔ اس کے پرویش دوار پر مہان یودھا رستم کی ایک بہت ہی شاندار مورتی بنی ہوئی ہے۔ رستم کی اسٹیچو کو اس پرکار سے بنایا گیا ہے کہ مانو پوری گفا کو اس نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہو۔ دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، آپ سے انمتی چاہتے ہیں۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور اب سمے ہو چکا ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ شیراز میں ہوا تک کہ حملوں کی نندا کے لیے پورا ایران سڑکوں پر اتر آیا ہے۔ ودیش منتری کا کہنا ہے کہ ایران یوکرین اور یمن جنگ کا ورودھی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ آتنکواد کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور عمران خان لانگ مارچ پر نکل پڑے ہیں جس سے سرکار کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو صدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو انمتی دیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔